कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर।
ये फोकट राजर साथ है तो उसको पार करके छोटा आत्मा को साथ में जन लीजिए, राज भी दे दिया। सिकंदर की जन्म का रोग जो कि कितना भी ठीक नहीं हो रहा था वो ठीक कर दिया। सर्वानंद की माँ का इतनी भयंकर बीमारी थी और सिर पे हाथ रखते ही वो ठीक हो गई थी। तो इस प्रकार कबीर साहब ये पूर्ण परमात्मा है। इतनी लीला देख कर इस कबीर भगवान की 64 लाख शिष्य कबीर साहब के हो गए थे। 64 लाख शिष्य। और देखो आज से 500 वर्ष पूर्व, 550 वर्ष पूर्व हिंदुस्तान की आबादी ज्यादा से ज्यादा 4 करोड़ रही होगी और उसमें 64 लाख से सो जाना हिंदू और मुसलमान, तो उस उन परमात्मा में शक्ति की कमी नहीं थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि हमारे अंदर ये बातें हम सुन लेते हैं, बार बार सत्संग सुनने से हमें ये याद हो जाती है, फिर घरों में सुख इतना दे देता है कि जो काम आपका होता है तुरंत ठीक होने लग जाता है। फिर आपत्ति आप पर आती नहीं सतगुरु शरण में आने के बाद, फिर हम गफलत कर जाते हैं। उनमें से क्या हो गया था कि कुछ तो फिर लाग गए थे मंदिर मुंदरा में जान और कुछ ऐसे सुनी सुनाई अफवाहों पर गुरुदेव की निंदा करने लग गए। तो कबीर साहब ने सोचा कि भी इनको ये देख लेते हैं ये कितने पानी में है, ये मुझे भगवान मानते हैं या इतने काम सरे इतने मेरे पीछे चपट रहे हैं। इस परीक्षा एक ऐसी लीला की परीक्षा लेने के लिए अपने 64 लाख शिष्यों की, एक दिन कबीर साहब सत्संग कर रहे थे सत्संग और उसमें एक गणिका आ गई वैश्या जो उस काशी शहर की मशहूर वैश्या थी और उसको सब बदनाम औरत मानते थे और वो सत्संग में आकर बैठती। जो कच्चे भगत जन थे ना वो उसको करणी करणी नजर से देख रहे हैं कि ये नीच यहाँ कैसे आ गया तुम्हारे सत्संग में। और संत जो है कहते हैं सत्संग में आकर पाती भी पार हो जाती है। और सत्संग किस लिए, यहाँ कति निकम्मे से निकम्मा आदमी भी आदर को हम आदर से सत्कार से स्वीकार करते हैं क्योंकि वो बेचारा सुनेगा अपनी बुराई छोड़ देगा। अगर हम यहाँ नहीं देंगे तो वो सुनेगा कैसे, उसको कैसे ज्ञान होगा। बेशक शराबी भी हो महाशराबी हो अरे वो भी सत्संग में आ जाओ उसको स्वीकार करते और वो पी ना रहा हो उस टाइम, उस समय पी रहा होगा फिर स्वीकार करो जब सुनो तो कहीं है नहीं ना उसको समझ में आया पिता पाप बोल जाकर पिए पा सकते उसको नहीं आने देंगे। बाकी शराबी हो बिना पिए आ जाए बेशक आ जाओ, चोर हो बेशक आ जाओ, डाकू भी आ जाए हो सकता है तेरा कौन सी बात और कब समझ में आ गया और यह बीमारी कट जाए उसकी, क्योंकि अनजान पने में कुसंगत में जाने से के ना जाने कितनी अच्छी आत्मा का बालक और नकमे बालका में रह गया इसके साथ दुश्मन बन जाए अपना सर्वनाश कर लेगा और बदनाम हो जाए। और हो सकता है वो सत्संग में आकर और सुन ले उसका बेड़ा पार हो जाए। सत्संग कबीर साहब कर रहे थे वो गणिका यानी अवस्था भी आ गई उसके भाग जागने थे और कबीर साहब कहते हैं कि एक लोहा पूजा में राखत एक घर बधिक पड़े पारस गुण अवगम ही देखे और कर दे कंदन खरो। एक तो लोहे की मूर्ति पूजा के लिए भगवान बनाकर मंदिर में पूजी जा रही है और एक वो तरह छुरी इतनी लंबी और कसाई के घर पर بکرے کاٹ رہی ہیں. اگر پارس کے ساتھ دونوں لوہوں کو لگا دیا گیا دونوں کو سونا بنا دے گا, وہ پتھر ایسا ہوتا ہے. تو یہ نہیں دیکھتا کہ اس میں لوہا چاہیے, یہ نہیں دیکھنا یہ مندر کی مورتی ہے یا کسائی کے گھر کا. تو یہ انسان جو ہے اندر جو آتما ہماری ہے وہ پرماتما سے سمبندھت ہے. یہ اوپر کا کور ہے یہ من, یہ کھوتے کرم کرواتا ہے, کرتے ہو کراتے. اس میں 25 پرکرتیاں جو من کے آدھین ہیں اور آتما کا پرماتما کا سنیوگ ہے. تو جب صحیح سبق سے جڑ جائیں گے, نام صحیح مل جائے گا, تو یہ آتما پرماتما بن جائے گی, یعنی ستلوک جانے کے ادھیکاری ہو جائے گی. یہ دیش سے کتنا پاپی ہو لیکن آگے پاپ کرے نہیں, آگے کوئی برائی نہیں کرے, تب یہ پرسن ہو کر بھگوان اس کے سارے دکھوں کو دور کر کے اور سب پاپوں کو کرموں کو کاٹ کے اور ستلوک بھیج دیتے. ستسنگ میں بتایا جا رہا ہے کہ بھائی برے کرم کا پھل برا ہی ہوتا ہے. یہ منوش شریر برباد کرنے کے لیے نہیں ملا, ہم نے اس میں کیس ہو کر رکھا کہ بالک ہو گئے, پھر یہ سہنے ہو جائیں ان کا بیاہ کر دیں گے, پھر بھگوان ان کا بچے ہو جائیں. ہم پھر جو سب مر جائے گا جو بنا دے گی, ہم نے اپنی کوئی چنتا نہیں, بس یہاں تک ہماری بدھی کام کر رہی ہے. لیکن نہیں بھائی, یہ جو ہونا ہے یہ تو ہونا ہی ہے, یہ تو آپ کا پہلے سے پرارمبھ ہے, یہ بھگوان نے آپ کو دینا ہے. جیسا اسی کو دیکھ کر تو راضی ہو رہا ہے, آگے کی تیاری کرنے گا. اور کہا دیکھ بھائی کتنا برا آدمی ہو, اور جو ستسنگ میں آ گیا وہ پنیہ آتما ہے, اس کے بہت اچھے بھاگ ہیں. باقی رہے کرم اپنے کرموں کو تیاگ دے, نام پہ لگ جائے, آگے برائی کرنی وہ ہنس آتما ہوتا ہے. کہتے ہر سمرا سو ہنس کہا ہے, یہ کامی کروی کاگرے اور بھورا نہ بھرم وس کے بن میں چل گئے گم پر باغرے. ہر سمرا سو ہنس کہا, جیسے ایک ڈاکو تھا برہمن گھر میں جنم اتم کل میں اور کسنت میں پڑھ کے وہ نیک آتما ڈاکو بن گیا. اور ایک دن کا ستسنگ رشیوں سے سنا تھا کہ نادان تو کیا کر رہا ہے, یہ تیری جان کا جھاڑ بنے گا, تجھے بھونگنے پڑیں گے اور تو اکیلا دکھ پائے گا. اسی ستسنگ کا سن کر اس نے اپنی برائی تیاگ کر اور بھکتی شروع کر دی, وہ مہرشی کہلائے. ہر سمرا سو ہنس کا اب ہمارے سرن میں نا کم سے کم 1500 ایسے بھجن آئے ہیں جو میرے شراب پیا کرتے تھے اور آج انہوں نے شراب تیاگ دی اور اپنے بچوں کے ساتھ بٹھا کے آرتی کرواتے ہیں, پاٹھ کرواتے ہیں, سیوا کر رہے ہیں. پہلے انہیں شرابی کہتے تھے شرابی, اور اب انہیں بھگت جی کہتے ہیں. ایک گاؤں میں ایک بہت تگڑا شرابی اور کرسولا گاؤں میں بھیم نام ہے اس کا, روڈ ویز میں ڈرائیور, اتنی دارو پیو ہے شام نہ آئے تو بیتا گیٹ میں پلان پائے. کہتے کسی کہنا لٹھم لٹھا تو رہتے آپ اس میں گیر رہے کٹن لاگ رہے روز کا کام, جہاں آپ اپنی گھر والی میں کٹ ہے. تو شرابی اپنی پتنی کا پرتھم دشمن ہوتا ہے, اس نیچ آتما نے سن کے انہوں نے گھر پہ کیر جنم کر رہا ہے, اگر روٹی نہ بناو تو ہمارے بنا دے کسی نے کھا لینا سو بار میں کر کے پھر سر کٹ جائے, ان کے بالکوں کا جل کمزور ہو جاتا ہے. اور وہ انسان بھی ستسنگ کو برا بتاتے ہیں اور کرمہین, کیونکہ انہوں نے یہ پرکریا دیکھیے تو نہ کرے. تو جو اتنا شرابی اس کی پتنی نے نام لے لیا, اس بہن نے نام دے دیا, تو اگر وہ شراب نہیں پی رہا تو ٹھیک بولے یا کہنے لگی میں نے نام لے دیا اور ایک پاٹھ کروانا پڑے گا. وہ بولے بھائی پاٹھ کروانا, وہ بولے وہ بولا پاٹھ تو اس سے کروا لے پر میرے کو نام کیوں نہ کہہ دیے, اپنا نام تو میں لے رہی ہوں تو نام مت لیے پر پاٹھ کروا دیے. تو جی کیا ہوا, چلو پاٹھ کی سویکرتی ملی. ایک ہمارا سیوک تھا پولیس میں और वो एड्रेस लेकर उसका कि किसका पक्ष है करसोला गांव में कि महाराज जी से मिलना है वहाँ, उन्हें सोचा वहाँ दर्शन करने के आ जाएंगे। उनका गांव से अड्डे से दूसरी तरफ घर पड़ा, बिल्कुल पश्चिम पूर्व में हो सकते हैं करसोला गांव, वो वहाँ उतर के अरे पास का उसके क्योंकि रोडवेज में ड्राइवर उसी गाँव में चाले तो सारा गाँव जाना ग्रह तो सकता मैं कीर्तन में थोड़े जानते हो मैं आ गए गोल बांध है ड्राइवर पूछ ले खराबी सारा प्रसिद्ध और कुछ रोडवेज का ड्राइवर होने से ज्यादा वेल नोन था, इसलिए विहीन ड्राइवर ने किया उसमें कीर्तन डॉक्टर विहीन ड्राइवर का भाई, तो इसने सोचा वो बड़ा भाई है उसका तो उसको सुन रखा था, इसने सोचा विहीन का नाम पूछ ले अड्डे पर तो उतरते बस स्टैंड से कहने लगा भाई मैंने विहीन ड्राइवर का जाना है और मिलान के पाठ हो रहा है आसन लग गए भीम का पाठ का भीम का पाठ उसको नाम मैंने बोला भीम का गाना मैंने सत्संग है वहाँ पाठ हो सर उसको मौका ना देखा रास्ते को किसी ने बता तो नहीं दिया भीम का पाठ का केवल बोले बोले तो अगर मेरा खराबी एक नंबर का उन्हें सोचा बड़ा सवाल था क्या भाई इतना जो फिर पूछा ये भी नो के वो इस वो भीम का पाठ कर वो हंसन लाई गए उसने सोचा किया तो मेरे गल बनी की भाई कभी एड्रेस गलत दे दिया कभी वो गाँव नहीं हो बोला करसोला गाँव है गाँव करसोला और भीम ड्राइवर भी है और भैया तो एक नंबर का शादी है एक बोला फिर तीसरे से पूछा उन्होंने बोला गया तो कृष्ण डॉक्टर के पास तो क्यों आई गए बोला वो बता दो जब कि छह अकीदर से उन्हों को भाग होगा हम पहुंचा दिया कहने आ जाओगे उसके केड उसके बाद क्या हुआ दो तीन महीना बाद भी उन्होंने भी नाम ले लिया और उसने शराब छोड़ दी फिर भी उनका पाठ हो गया इस वो फिर एड्रेस लिख रहा था भी ड्राइवर पाठ फलाना और इसका फिर आना होगा कि ना बैठो महाराज जी के दर्शन कराया कर सोलह का उसने कुछ क्यों ऐसी वाली गोली सी गोली है वो भी बोल दिया आपने प्रथम बार जाया था उसने डरते डरते मैं पूछा बोला भाई वो कृष्ण डॉक्टर का जाना उन्हें वो भीम का नाम बना दिया उसने किसी को कहा कुछ तो बोले कृष्ण डॉक्टर का जाना हूँ पास हो गया तो इसने फेंट गया तो हमारा सेवक बदल दी उन्होंने बोला कृष्ण डॉक्टर का नहीं वो भीम भगत जी का हो रहा मैं बोला सारा काट गया एक महीना तो मैं मैंने शराब दी क्यों फिर भीम भगत जी हो गई तो वो वापस घर पर पहुंचा तो जब सेवा करम लाग रहा जी सारा आगे खड़ा मैं बोला सारा काट गया तो कमाल हो गया भाई एक महीने पहले तो शराबी भीम कहलाता था और आज भीम भगत जी कहला रहे हैं तो कहते हर सोमरा तो हंस कहा है हंस हो गया और कामी क्रोधी कादरे अगर बकवाद करते हैं तो कौवे जैसे जीव हैं दूसरे की आत्मा दिखाना घर में लड़ाई रखना उनका प्रथम करते होता है क्योंकि वो स्वयं गंदी जोड़ियाँ चाहे हुए प्राणी हैं इसमें दो प्रकार से मनुष्य जन्म जीव को प्राप्त है एक तो ट्रन वाइज नंबर है ट्रनवाइज का मतलब है 84 लाख दिन या भोजन भोगने के बाद परमात्मा एक अवसर देता है मनुष्य शरीर का जो मनुष्य ऐसा शरीर प्राप्त है कि वो 84 लाख पशु दुनिया में से निकल कर और सीधे ही मनुष्य शरीर को प्राप्त है वो भक्ति नहीं कर सकते वो सत्संग नहीं सुन सकते और उनको ये बातें असर नहीं कर सकती कि लाख बार कह लें उनसे विषय नहीं छूट सकते उनसे शराब नहीं छूट सकती वह बीड़ी नहीं चाल सकते क्यों उन्होंने जिसे विषय विचार उन्हें प्रभावी हैं क्योंकि वो पशु जोनी में पहले भी ऐसे ही आहार कर रहे थे क्योंकि शेर बनकर गंदगी खाते थे गंदगी सूंघा करते थे आज भी उनके अंदर तमाकू पीना सूंघना और खराब पीला वो गरीबी की एक समावेश कर चुकी है, उन्हें छोटा घर कर दिया। एक होते हैं जो पीछे भक्ति करते ही आ रहे हैं, उनको मनुष्य शरीर ही मिलता आ रहा है, वो प्राणी एक जो सत्संग सुनकर तुरंत फैसला कर लेते हैं और अपनी बुराई भी छोड़ देते हैं। तो कितने महाखराबी थे और कितने जुर्मी लोग कहा करते थे, आज वो देवता शुरू हो गए, क्योंकि उनके वो विकार प्रभावी इतने नहीं थे, संगत में पढ़ के बुराई कर गई नहीं थे, अज्ञानता के कारण सत्संग सुनते ही जागे, आज वो अपने बच्चों के साथ बैठते हैं, शाम के समय आरती कराते हैं। एक दिन मैंने पंजाब छोड़ गाँव है दिल्ली में, भगत जगदीश आया हुआ हमारे इच्छे आज हमारी जेल लगे हैं बेचारा, यो एक नंबर का शराबी है, क्यों दिल्ली के लोग पैसा बतेरा इन दौरे तो मेरा शराबी खाए वो देखो हाल लग रहा है, तो सुनकर निकला गया बाहर में अपनी कभी गली शराब पिया करता। ऐसे ही सत्संग सुनाने के बच्चों ने फिर इनसे भी कहा कि आप भी नाम ले लो, ये भी आज भी रात में आ मेरे बोला 1 जनवरी को, मैं बोला 1 जनवरी को छोड़ दूंगा, अपना डर लिया क्यों इस राजा ना मुंह देख है, मैं बोला 1 जनवरी में छोड़ दूंगा, कभी नहीं पी और नाम उसका जन लूंगा। ये 1 जनवरी में 31 दिसंबर समाप्त हुआ, 1 जनवरी का 1 बज रहा सत्संग करके मैं सोम की तैयारी कर रहा था, इसके घर पर सुमित्रा नाम से वह इसमें लेकर आई और वह ले रही नाम किसी और का, उन्हें गए इसका नाम एक नकली संत बन गया इसका नाम ले रही और इसने जो हम लाई मारे थे, तो मैं बोला गए तो नाम ले रही है, मैं तो ये ले रही थी इस पर मेरे पिता मेरा मौलस रहा है, मैं बोला इस मौलस रहे पल्ला ना कुछ जाकर और पंजाब में एक ही स्थान पर हो जाए, तो ये बोला कि मैंने नाम दे दो, जगदीश बोला मेरा भाई नाम ले दे लो, ओका बीड़ी शराब पिया करा खूब पिया करो, मैं बोला मैं छोड़ नहीं पड़ेंगे अब छोड़ दूंगा, तो काफी पी पाया हूँ और शराब पी किसान में से, मगर फिर तू छोड़ दे चलो 10-15 दिन छोड़ के देख ले, मैं बोला जी मैंने छोड़ दी आज पाखर नहीं थी, मैंने सोची माँ भाई इसमें चित्र नाम देने का ऐसा पी थी शराब मैंने साग में पी थी और मेरे नाम दे दे, मैं सोची मैं चल गया एक लोग डालेगा किसके नाम लेगा तब के सर भी पी लाए पाएगा, मैं इसको फरकाऊँ एक तरफ कि आप 2-4 दिन देख लो अपनी ट्राई करके छूट जाता अच्छा है, मैं बोला जी मैंने दे दो नाम कभी मौका से फिर नहीं छूटा जी मेरे मैं कभी नहीं पीऊंगा, मैं उन्होंने नाम दे दिया मैं ले क्यों कान खा तू नाम ले लो, वो दिन साल इसने तो 6 साल लग गया, मिसाल 5 साल इसने हाथ नहीं लगा क्या हो गए 5 माह लग रहे इसने किसी चीज को छुआ नहीं, एक नंबर में से आग रहता सारा परिवार को ना। एक दिन मैं क्या बताऊं था इसका मैंने टेलीफोन कर लिया, कोई काम था इसके पुस्तक छपवाने के लिए दिल्ली में आदेश देना था, तो इन्होंने आरती समापक की थी और इतने में घंटी फड़गी, मैं बोला जी क्या कर रहा है क्या कर रहे हो जगदीश, मैं बोला जी क्या कर रहे हो साहब आपकी बात याद करो फिर रोआ थे आरती पूरी करी थी सारा कमरा बैठ कर रोआ थे कि इस टाइम बालकनों को रहते इस टाइम तो मेरे पिताजी नालियों में थाग लेने पड़ते और बोला हमारे गुरु जी हमारे वैश्य के बीच में आरती कर रहे हैं, ये शाम का समय और हम आरती कर रहे हैं, कह गए हम पानी आ गुरु मेर करें तो कागजा से हंस बना दे, गुरु मेर करें तो कागजा से हंस बना दे, तो ये कागज से हंस बन गया हम, क्यों अनजान पड़े में बुराई कर रहे थे बिना गेरे में और ज्ञान वाइज देख लो एक नंबर का आगे सेवा में रहते हैं सारा परिवार परमात्मा चिंतन करता सब कहेंगे ठाक हो। सुमित्रा ने भी नाम ले लिया, सुमित्रा के दोनों गुर्दे खराब थे और डॉक्टर ने बता दिया था 2.5 महीने के बाद ये जीवेगी नहीं, आज उसमें 5 साल हो गए घोड़े के सियोरी से नाम लेने तक। कौन सतगुरु देव सत्ताही, तो जी उस लड़की ने सत्संग सुन लिया, इसने उदयचा नगन कर और सत्संग सुनने के बाद कहने की महाराज जी मैंने नाम दे दो, तो बंद खड़ा करा बंद है। वो बहन जो सत्संग सुरसना कबीर भगवान के मुखारविंद है, उस बहन ने अपने जीवन से नफरत होगी कि तेरे जैसा घटिया जीव पृथ्वी पर सोना, और तेने तो अपना जीवन खो लिया भगवान पाने के लिए, मनुष्य शरीर मिला था क्योंकि सत्संग के अभाव से नाच जाने कितनी पुण्य आत्मा के बुरा काम कर बैठे, और वो जिस दिन त्याग कर सत्संग आ जाए हम उनको अपनी छाती से लगा लेते हैं, हमने बहुत प्यारे लगते हैं, समाज से उनको कुछ भी कहें क्योंकि समाज अपनी दृष्टिकोण से देखता है, हम अपनी दृष्टिकोण से देखते हैं। समाज स्वयं दोषी बुराइयां करता है और दूसरे में बुराइयां देखता अपनी नहीं देखता। कहते हैं भैंस जो होती है ना, भैंस स्वयं काली होती है, अपने रंग में ना देखा छतरी देखकर डर, इंसान अपनी बुराइयों को नहीं देखते, दूसरे की थोड़ी सी बड़ी देख करके डर जाते हैं, उसको दिन गाने शुरू कर देते हैं, ईसा है ये कैसा है, और अपने ना देखा जाए कभी सारा काला रहा जो तू। एक बोला बोला भाई नाम ले लिया तुमने, नाम ले लिया भाई क्यों चेहरे के दर्द हुआ, नाम ले लिया मैं सोची खा गई जगह फैली चालती में मालियाँ चढ़ा रहा करता, मैं बोला मैं चाल तो बढ़ा अठारह क्यों कर लगे कुत्ते तो मिट्टी ही ना चले, अब मैं चलते बड़ा कम से कम बुराई छोड़ के चुका हूँ, अब तो मन रेत रुड़े हो गए, अब तो मुझे बुरा बता रहे हो तुम सत्संग सुनो एकदम जागे फर गए हो ना, इस खतरे डिंडे हो रहे ठीक हो गया। सत्संग सुनो कौन उनके भाग को ना इतने अच्छे भाग बना, सत्संग में जीव नहीं आ सकता, बिल्कुल नहीं आ सकता। तो जिस लड़की ने कहा कि महाराज जी मैं नाम लेना चाहती हूँ, एक बोला महाराज जी या नाम लेने की देना, क्यों भाई नाम लेने की किसी बात नहीं, अब महाराज जी बस ये बताऊँ या बताने की भी देना, मैं बोला तू अपना एक लोग बैठ के एक तरह बैठ जाते हाँ बेटी के पास ये बात है क्या बात है कि महाराज जी मैं बताऊँ मैं बहुत पापन हूँ, मैं बहुत पापनी हूँ, ये बता तो बेटी तुम्हें पाप भी होगा तेरा, मैं ऐसे ऐसे जनता हूँ और महाराज जी मैंने सत्संग सुन लिया तो मेरा जैसी पापन का भी उद्धार हो सकता है, अब होया पड़ा है बेटी जो आगे बुराई नहीं करेगी और नाम ले ले, हमारे मंथन में ये जन है कि तेरे सारे पाप कर्मों में काट देगी, बेटा तुमने अनजान पड़े में किया था। कहते हैं शरण पड़े तो गुरु संभाल जान के बालक भोला रे, और कह कबीर कर्ण तक रखे जो से ही में डोरा रे, जिस प्रकार की छोटा सा बच्चा 6-7 महीने का और पालने में लुटा के माँ की काम लग जाए, कुछ देर के बाद वो आती है तो वो रोता हुआ मिला है, रोता हुआ मिला है तो आज जान जाती है कहते उसने पट्टी कर रखी, क्या प्रसाद कर रहा होगा क्या भूखा होगा, जो उठाकर देखती है वो शक्ति और प्रसाद दोनों कर रहा है और अपने पैरों में आखन मारकर सारे पृथ्वी को शक्ति भी देख रखी है, वो माँ में बुरा नहीं लगता, वो बालक है अपने बेटे में नवाएगी, लड़का है तो लड़की, और फिर उसके कपड़े साफ करेगी, नए वस्त्र पहनाएगी, दूध पिलाएगी, लाड करेगी, क्योंकि उसको मालूम है इसने अनजान पड़े में गलती करी, इसमें जान बूझ कर नहीं व्यवस्था, इसलिए अरीब को बड़ा है पाछा कर देना है दो तक डंडे ठोके अक्षर पिछा करे तो ये छाना होगा तो गलती करे फिर वो सहनीय नहीं होता, और वो नादान था अनजान पड़े में उसने किया था, तो उसको ऐसे ही कहते शर्म पड़े में गुरु से मारे, हम बुराइयां करके गलतियां करके अपने कर्म बिगाड़ लेते हैं और फिर रोते हैं भगवान ए भगवान मारा नहीं हो गया, ए भगवान मुझे ये हो गया, तो फिर अगर शर्म शर्म में आ जाते हैं तो वो फिर धो मांज के सत्संग रूपी जल से अपने उस नादान आत्मा को साफ करके और सीने से लगा कर उसको प्यार देता है ऐसे साथ में नाम देता है, अमृत अमृत जैसा दूध पिला देता है ना राम नाम का। कहने की बेटी नाम ले लेते बेड़ा पार, लड़की ने उपदेश ले लिया, अपना ग्रहक्रम चाह के और अपना स्वाभाविक तो दूसरे प्रोफेशन को अपना लिया तो काम करने लगी। लेकिन ये समाज है ना, ये जल्दी सी वो लगी हुई फीत में तारा नहीं करे। मनवाने आज से 3 सकीन पूर्व को सरपंच बनाओ, उसको अभी तक भी नहीं गए ये प्रधान है भाई, आइए प्रधान जी उसने सूखी सूट बने जाएंगे। और ऐसे ही आज कुमार कहते हैं कुमार, जिनकी 3 पीढ़ी होगी काम का काम करें उनको ही कुमार की फीत ला रहे हैं। क्योंकि हम सरफ इतना ही एक गेसी पटी लकीर बना रखे हैं। उस लड़की को सभी जनका कहते हैं, वैसा कहते हैं, और कबीर साहब उसको अपनी बेटी कहते हैं क्योंकि वो अब जनका नहीं है। तो जी जब उन्होंने नाम दिया कुछ लोग तो जब जेकन बगदन ये महाराज जी ने भाई इसे व्यक्तियां नाम नहीं देना थी। अब जो गुरु को शिक्षा देने लगे तो गुरु के भी गुरु हो गए, अर्थात उनका नाम कट चुका है, खत्म हो गया। तो ये कहे कि गुरु जी ने ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए, तो गुरु जी वो चेले को ना वो तो उस्ताद हो गए गुरुदेव के और उनका नाम खत्म हो चुका है। ये नाम ये भक्ति एक बहुत मर्यादावत करनी पड़ती है। जैसे माता गर्भ ने रखा है जतन बना और ठेस लगे तो छन्न हो तेरी, ऐसे भक्ति का जिस प्रकार माता अपने गर्भ को बड़े ख्यास से रखती है कि कहीं उग चुक ना हो जाए भगवान, कभी मेरा बच्चा ना खराब हो जाए। कहते हैं वो ठेस भी लग जाए तो वह भक्ति ऐसे ही तेरी भक्ति जागी अगर छोटी सी उग चुक तूने कर दी। और कबीर साहब को से विशेष प्रार्थना करती थी, ज्यादातर सतगुरु के चरणों में लगी रहती थी, पैर पकड़ कर छोड़ जाए नहीं करती थी। क्यों? वो सोचा करती थी कि मैं घनी पापनी हूँ, उसका अंतर्गम जाग गया था ए गुरुदेव, क्योंकि अपने बाप के समान समझ कर और अपने गुरुदेव के चरणों का माँ बैठी रहा करती थी, उनके चरण दबाती थी और सतगुरु से प्यार करते थे। बेटी मंड जाकर ली हो गए, क्योंकि मैं कहती जी मैंने अपना अवगुण भी खसा है, इस जन्म में तो मैं इतनी दुखी थी, ये भगवान का जो फिर जन्म ना हो गया। तो लोग जो संत भगत जन थे नाम ले रहे थे, वह अग्नि आत्मा वो कहने लगे भाई गुरु जी इस लड़की को बड़ा साथ रखते हैं, यानी वो अपनी नीचता अपने भगवान में देख रहे हैं और शिष्य है उनके। अब यहाँ मार खानी शुरू कर दी नीच आत्माओं ने इन उन शिष्यों ने। अब संत जो है उनके लिए सभी लड़के और लड़की एक होती है, क्योंकि वो ऊपर के कवर में नहीं देखते, अंदर देखते हैं, आत्मा से संपर्क है ईश्वर का, इस कवर से नहीं, कवर का संसार से संबंध है। तो वो लड़की ज्यादातर क्यों उसका कोई शादी तो नहीं, वो भी दुनिया से दुखी थी और प्यार उसके गुरुदेव के पास ही मिला था, वो अपना दास समझ कर कभी कहती थी महाराज जी मेरे घर पर आइए, आऊंगा बेटी नहीं क्यों। उनके घर पर महाराज जी घंटों बैठे रहते थे, लड़की पैर दबाती, कुआं महाराज जी के लिए दूध बनाती, सेवा करती। तो सारे लोग देखे और राखी माँ का देखकर गोली हो गई, लेकिन महाराज जी लड़की तिर बैठी हुआ गणका के घर पर, गणका तो नीच आत्मा तुम्हारे लिए है, उसके लिए हमारे लिए तो बेटी है, अब ये गणका नहीं है। तो अभी क्या हुआ, वो सुर 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 सारे होगी, सतगुरु ने सोचा यह सुर 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 सुश्रिय कर जाएंगे इनकी सारे कोल बैठ जाए, कितने भी मुझे चाहते हैं मुझे भगवान मानते हैं कि अपने जैसा ही समझ रहे हैं, क्योंकि हम अपनी बुराई दूसरे में देखते हैं, चोर में सभी चोर नजर आया करें और था को था दिखा करें, यह कुदरती बात है। तो जो कमियां वो गुरु जी में देख रहे थे उनमें विद्यमान थी, अगर उनमें नहीं होती तो उनके सपने में भी नहीं आती कि ये ऐसे क्यों बैठे हैं गुरु और ये लड़की। तो सतगुरु ने सोचा लाइन का पक्का काम कर दो, अरे तो छोड़ भी मार के जो इसमें उसमें जाने कितने जुमला कितना 65 लाख का टोल होता गया। ये इनके काम सर गए कुछ ज्ञान प्रभाव से। एक दिन क्या किया, उस लड़की से कहा बेटी आपको सुथरे कपड़े पहन कर हार श्रृंगार ला ली। उसकी माँ रख जाएंगे मुँह पहना देखेगा तुम्हारा दिन किया आदेश किया है। कहने बेटी मैं तो कहूँ ऐसे कर ले एक काम करना, अब जैसे गुरुदेव आपकी जो शरीर आती आपका माँ आपकी बेटी हूँ जहाँ पर ये करना हो कर लीजिए। तो सवेरे का हाथी किराए पर ले आए। रविदास ने बोला तू हमारा हाथी हाथनिया बन जाइए पीलवान, अब जैसे हुक्म आपका। लड़की को हाथी पर बिठाया बीच में, आगे रविदास जी अंकुश लेकर हाथी हाँक रहे हैं, बीच में वह गणिका जैसा वैसी दुनिया की दृष्टि में गणिका, लेकिन उसमें भक्त आत्मा और सतगुरु की प्यारी बेटी थी। और कबीर साहब पीछे बैठे हाथी पर और एक बोतल में गंगा जल घाल रहे, गंगा जल भर के और ऐसे पीरे जैसे शराब भी पिया करें, और उस लड़की के कंधे बाजर कर और बाजार में वह घूमन लाग रही। मेन बाजार जो कि बहुत भीड़ वाला था, हरिदास ने बोला उस मेन बाजार में काट दे कैसी वाले में अच्छा जी। अब जो सा भी देखा रही हूँ कि जुलम हो गया, हमारा तो जीना आराम हो गया, बहन बेटियों का बाहर निकलना दुबर हो गया, ये क्या जुलम कर रहा है, ये देखा ना वो दुलाहा, हम तो भाई पहन लेता है करते नीच आत्मा से इसकी टोली पट्टी है, उनके चिल्ला मिलाओ बोला राजा खरे गुरु जी दिखाओगे आपके गुरु जी के लक्षण देखो। और महाराज जी पियो नौकर जैसे शराबी करते और लड़की के काम देता कर रहे, ऐसे समय में डकना था ना से काम कर रहे थे गुरु जी ठीक दिखे तो सभी रुके हुए थे, वो टाइम था उस सतगुरु के ऊपर विश्वास करने का। तो जी जम सा भी आगर में तले तले देखा नौकर, मैंने नाम तो ये ले लिया था, मैंने तो मेरे को रविंद्र ने धक्के भिजवा दिया था नाम, मैं तो एक दिन से ला गया था, मैं सारे खिसक गए मारे किल की। तो कबीर साहब अपना घूम फिर के रविदास ने बोला तू तो अपने घर में, लड़की ने बोला बेटी तू भी अपने घर में जाए मेरा भी सिक्का जा जाएगा। शेख तकी और सिकंदर ने भी उन दिनों काशी पहुंचे हुए थे, और कबीर साहब भी वो दिन देखा कर गए शेख तकी कब सी आवाज है, उस दिन को इनको ड्रामा सतगुरु कर ही दिया कर गए उसमें उसके टांगी धोती भाई और पहुंचा वहां
मेरे कमरे लेते मेरे साथ वालों ने उन्होंने देखा जाखी में गोबर डांस छोड़ी थी रतना दिन में कबीर साहब तो वहां बैठे दुनिया का लाइन लगी वहां से पकड़ लिया फिर उस कबीर साहब को। शेख तकी बोला अब के देखेंगे इसको, राजा से कहा कि इसको सजा दो, अब क्या सजा देना चाहते क्योंकि खूनी हाथी का में घेरांगे इसको, इसको पड़वा देंगे दुनिया के सामने। उस नीच आत्मा ने न्यों नहीं सोचा तोप के गोला का रफर नहीं हुआ और ये हुआ खूनी हाथी, इसका चिंता क्या उसको ना तीर मार देगा और बुद्धि भ्रष्ट था वो भगवान से खस्ता हुआ। अंत में क्या हुआ जी, ऐसे सिकंदर लोदी एक उनका मकान सा बना होता राजा का, वहां बैठे हैं और पब्लिक चारों तरफ देख रही है खड़ी खड़ी, कबीर साहब को घूर कर बांध कर और वहां घेर दिया खुन्नी हाथी के आगे। पीलवान जो है खुन्नी हाथी को जो मतलब खुन्नी होता है वो खून खाता पी जाता है आदमी को फाड़ के और फूंड ला कर खून में पी जाता था, उसको चस्का होता है वो बहुत भयंकर जानवर होता है आदमी नहीं सोचा कर रहा। तो उसने पीलवान जो है उसको लाता है कबीर साहब की तरफ, कबीर साहब ने शेर का रूप दिखा हुआ हाथी था, हाथी तो मारा तो लीद कर और डांट ठोक दी। पीलवान ने सोचा तो मारा गया भाई, क्योंकि राजा देखने लग रहा तेरे पर कंट्रोल नहीं हो रहा हाथी और नौकरी काहे की करता है। उसने भी अंकुश ठोके मार मार के उसको फिर उधर लिया। तो कबीर साहब का दोष दे, गब्बर शेर का रूप रोक, फिर दांत छोड़ दे उल्टी। पीलवान ने फिर मुश्किल तुलझा। फिर सतगुरु ने सोचा कि ये नादान आत्मा पीलवान इस जीव ने दुखी करेगा। कबीर साहब ने उसको शेर का रूप दिखा दिया। पीलवान ने चौरा चिकित है वो दांत काट उठे। राजा ने सोचा भाई ये कैसे हो गया, ये हाथी तो कभी ऐसे जाता नहीं, और पकड़ो उस पीलवान को। इतने में कबीर साहब वो रस्से तंग रखे थे ना, टूट पाट गए, खड़े हो गए परमात्मा, और आकाश से सब लगा हुआ दिखता उस ईश्वर का। सिकंदर लोदी ने, सिकंदर लोदी वहीं से कांपने लगा था, उस मचान पर तो हाथ जोड़ कर नो नो करता हुआ, और सतगुरु के चरणा माता पड़ी गया, मैंने भक्त को परवरदिगार तेरे से गलती होगी, भक्त राख्या अपना काम करे। देखो तो नहीं तुम्हें देख लो, फिर भी तो नीचों की बातों में आ जाता है। कबीर साहब माठा गए तो उधर चल पड़े, उसको देख रहे हैं, उनको कोई असर नहीं हुआ। ये पूर्ण परमात्मा थे, अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक थे। तो जब हम सत्संग सुनते हैं, सतगुरु चरणों में आ जाते हैं, तो कबीर साहब की महिमा से हम परिचित हो जाते हैं। अब सत्संग के अंदर हर तालु पर ज्ञान दिया जाता है। मुहूर्त मनवा काल की चिंता सताती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है रविदास। कबीर हाथी चढ़ता ले संग ले ली गुण का माई, गुण गो भक्ति सी मैं भर के मदरा जो पीवे भाई। रविदास कबीर हाथी चढ़ता ले संग ले ली गुण का माई, गंगो दक्षी सिंह में भर के मदरा जो पीवे भाई। 64 लाख ने भक्ति बहाई, 64 लाख ने भक्ति गवाई, मूर्ख को ना प्रतीत आती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हर दम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता को सताती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हर दम साथी है। एक तकी ने जुलम गुजारे ये 52 करी बदमाशी, खूनी हाथी आगे डाले वो बांग जोड़ अविनाशी। एक तकी ने जुलम गुजारे 52 करी बदमाशी, खूनी हाथी आगे डाले वो बांग जोड़ अविनाशी। हाथी दसो भाग जाती दुनिया गुरु जाती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हर दम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता तू साथी है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हर दम साथी है। अब यहाँ क्या हुआ कि सभी शिष्य थे वो सब विमुख हो गए अपने गुरुदेव में, कमी मान गए, क्योंकि आपके मन में खोट आ गया। कबीर साहब से आपका कनेक्शन का गुरुदेव से कनेक्शन कट ऑफ हो गया। कहते हैं गुरु के दिल से ऊपर वो नाम जो हो ना हो, नाम रहित हो जाएगा, शब्द रहित हो जाएगा, और जाको काल घटित ही राष्ट्र के ना हो। उनमें से दो अर्जुन और सरगुन नाम के, वो कहीं बाहर गए थे भ्रमण पर, और वो जी वापस आए तो सभी ने कहा कि भाई गुरुदेव जी तो बिगड़ लिए कति, अब क्यों होगा कि न्योर ने जुलम कर दिया, न तो गण का को साथ में लेकर अब बैठा जाता लगे करता हूँ लड़की द्वारा, और हमने न्यो ना दे रहा था कति चाराए पैर देंगे, और भाई ऐसे ऐसे जुलम कर दिया बतान को भी बात को ना शर्म आवत है। वह ने बोले मूर्खो तुम गलत कहते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो परमात्मा है पूर्ण ब्रह्म है। ने बोला भाई हमने नहीं सोचा कर दिया पूर्ण ब्रह्म से, पर वो कहने के नहीं पाए। वो कहने लगा ऐसा क्यों ताला हो गया, अब कति ताला जी ऊपर कर दिया। कुछ बात तो बताओ कि ऐसे ऐसे कहानी बनेगी। बोले वह नहीं मानते हैं, नहीं मानते तो आज भी वहां बैठे उस लड़की के पास, चल दिखा के लाते हैं। तो वहां देखा तो वहां लड़की पर दबारी महाराज जी बैठे खाट पे, अर्जुन सज्जन देख कर दरवाजे में थे और बाहर से ही कहते हैं दोनों जगह कि गुरुदेव आपने यहाँ नहीं बैठना चाहिए था, ये नीच का घर है, बदनामी होती है आपकी। कबीर साहब कहते हैं ऊंच नीच में हम रहे और नादान ये तो हाल काम की दे, ऊंच नीच में हम रहे हार्ड काम की दे, अर्गुन सरगुन समझियो और तुम करियो सगुन सने। मैंने जो तुम्हें नाम दे रखा ना चुपचाप अपना वो काम करते रहो। अब तुम मुझे शिक्षा दे रहे हो गुरु जी यहाँ नहीं बैठना चाहिए था, तुम तो मेरे गुरुदेव हो गए आज तो बेटा, और भगवान न कम न कहेंगे तुम्हारी सारी भक्ति खत्म होगी। वो अधिकारी हंस थे, वो वहां से गए नहीं, चरणा में पड़ गए। तो बोले महाराज जी माफ कर गया पापी जी, उसे ईब माफ मेरा हो नहीं सकते, मैं माफ नहीं कर दूंगा तो भी तुम भक्ति नहीं कर सकते, आपकी वो श्रद्धा मेरे माज बन नहीं सकती जो कि पहले आपके दृष्टियों में था। और ऐसा अगर आपकी दृष्टि गुरुदेव की नहीं बनी रही कि गुरु को आप ईश्वर तुल्य और निर्विकार मानते हुए वो भक्ति कर रहे हो, और जब तुम्हारे मन में कोई खोट पैदा कर देगा सारा गुरु जी ऐसा है, सारा गुरु जी ऐसा है, मैंने वहां देखा, तो आपका काम बिगड़ गया, आपके अंदर वो प्रेशर कट ऑफ हो गया, वो भावना आपकी बन नहीं सकती गुरुदेव में, इतनी बने बना मुक्ति हरी हो नहीं सकती। गुरु मानुष कर जानते वो नर कहिए अंग और महा दुखी संसार में भाई आगे जन के संग। गुरु को परमात्मा मान ले, परमात्मा में कोई गुण नहीं अवगुण नहीं देखा करते, होते भी नहीं, ऐसे होना चाहिए। तो जी सर बोले जी हम पापियों का कब उद्धार होगा, यानी कि इस शरीर में मैं दोबारा नाम भी तुम्हें दे सकता हूँ पर तुम्हारी श्रद्धा हुआ बना नहीं, क्योंकि तुम कति मलिन हो लिए दुनिया की सुनकर आँखा देख कर, अब दूसरों में कितनी सफाई दो तुम्हें गतेगी नहीं कति भी कि गुरु जी तुम्हारे निर्विकार है। तारा में पढ़कर छोड़ दो को नहीं रोते रहे दो घंटे तक। चलो बोला मैं उठो तो मैं एक तरीका बताता हूँ क्या, आज से 300 वर्ष पूर्व ना 200 वर्ष बाद मैं एक दिल्ली से 30 मील की दूरी पर यानी पश्चिम में वहां कहीं आऊंगा, जन्म लूंगा, जैसे भी वहां आऊंगा तो उस समय मैं तुम्हें को तुम्हारे को दोबारा नाम दूंगा। जो बोले महाराज जी के बोला तो मिला ना बोला मनुष्य हम तो पापी है ना जाने 84 लाख दुनिया चले जाएंगे, अब ये सूट बैठ गया यानी हम उसको अवसर मिला हुआ है, मनुष्य शरीर भी है इसी में कर दो काम। जो बोला करके दिया था तो मैंने पापा अपने पैर पकवाड़ा मार लिया और के बताओ कुछ करके आ गए नाम दो रखा गुरु को बता रखी, अब जो बता रखा गुरु को भगवान समझते रहना और कुकर बता रहे भाई चल फिर ठीक है तुम्हारा शरीर यो का यू बना रहेगा, मनुष्य शरीर रहेगा तुम्हारा और मैं दोबारा आऊंगा जब नाम दूंगा। तो वही कबीर साहब गरीब दासी बनकर सुदाणी में किला रोहतक यानी अब झज्जर वहां पर आए, बलराम जी के घर में जन्म लिया और वहां पर जब 11 वर्ष के थे उस समय अर्जुन सर्जुन को सपने में दिखाई दिए कि अर्जुन सर्जुन तुम सुदाणी आ जाओ, उस समय उनकी आयु 250 वर्ष के लगभग हो रही थी। दोनों महात्माओं की लकर पकड़ करते हुए वो हमाइयों पर गांव है एक खरखोदा के पास, हमाइयों पर गांव में रहते थे एक भगत के घर पर, दोनों के दोनों बूढ़े हो रहे थे। वो पूछता था भगत जी कि यहाँ कैसे आ गए तुम कि दिल्ली से 30 मील की दूरी पर हमारे गुरु जी आओगे पश्चिम में, हम ढूंढ रहे थे वो कब से आओगे, काशी से चल कर वहां पहुंच गए थे। एक दिन सपने में कहने लगा सेवक, सपने में जो ज्ञान होगा सुबह उसका कहता वह सेवक आपने हमारी बड़ी सेवा की है पर एक अंतिम सेवा और कर दे। क्या महाराज जी? कि हमें सुदाणी भिजवा दे। तो बोले सुदाणी गांव ने कभी सुना है तो नहीं, कोई गांव नहीं है पर गांव सुदाणी जरूर होगा कितने के तहत आस पास है। तो ऐसे उसने एक नाई से पूछा पहले ब्राह्मण और नाई लड़कियों और लड़कियों की रिश्ते करने जाते थे, वो सारा इंडिया करते। तो उसने बताया कि हाँ जी एक ऐसा ऐसा वहाँ छुदानी गाँव वहाँ बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो वहाँ जाकर उतार दिए जी वह, और कबीर एकदम गरीबदास किया ने यानी कबीर भगवान ने दोबारा उनको नाम दिया और फिर उनकी मुक्ति हुई। तो इस प्रकार हमने इस भक्ति को बड़े ध्यान से करना चाहिए और अपने मन मुखी नहीं चलना चाहिए। जो 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 संतों ने मार्गदर्शन कर रखा है उसके ऊपर आरूढ़ हो जाना चाहिए।
सत कबीर द्वारे तुरे एक दास भिखारी आया है, सत कबीर द्वारे तेरे पर एक दास भिखारी आया है। भक्ति की भिक्षा जो भी जो उम्मीद कटोरा लाया है, भक्ति की जो भी जो उम्मीद कटोरा लाया सजनसी वो साथ नहीं मैं को सजात नहीं सजन साथ नहीं मैं को सजात नहीं मेरी और ध्वज जैसी साथ नहीं जिसने लड़का तीर चढ़ाया मैं भक्ति की सादे दी जो उम्मीद कटोरा सत कबीर गवारे तेरे पर एक दास भिखारी आया है, भक्ति की सादे दी जो उम्मीद कटोरा तप नहीं मेरा बाल की किट सजप नहीं देख फरीद जैसा तप नहीं मेरा बाल भी किट सजप नहीं मन सोर जसी नल हप नहीं जिसने टुकड़े शरीर करवाया है, भक्ति की भिक्षा दे दियो उम्मीद कटोरा लाए।
अब आपने सुना कि मेरी मंसूर जैसी अनल हक नहीं जिसने टुकड़े शरीर करवाया है। मंसूर एक मुसलमान घर में जन्म था, मंसूर जी का एक राजा का लड़का था, इसकी बहन का नाम सिमली था। जो इनकी बहन थी वो धार्मिक बहुत ही भगवान को चाहने वाली थी, अल्लाह का विशेष प्रेम लगाव था। उसी नगरी में एक बाहर एक आश्रम बना हुआ था, वहां उनके गुरुदेव रहा करते थे, एक संत समस्त प्रभेद जी। और उस लड़की ने उस महाराज जी से नाम ले रखा था, उसका विशेष लगाव गुरुदेव में बन गया था। लड़की शाम के समय जाती थी गुरुदेव का खाना लेकर सेवा करके आती थी, तो एकदम किसी ने मंसूर को कह दिया कि तेरी बहन जो है भाई संतरा से चल रही है उसको संभाल ले। मंसूर कह लिया क्या मतलब कि तेरी बहन राजस्थान के अपने दिन जिस प्रिया स्वामी के उपरांत और भाई एक आश्रम में जाती है। बोला अच्छा अब देख लेना शाम के समय खास करना। अब सिमली को शाम के समय निकली जिसमें लड़कियां गांव में देखकर जंगल पानी जाती थी मोह मेरा हो जाता है। एक मंसूर विश्वास रखा उसने जो अपनी बहन से जो किलो तीन किलो पूरी कर उसके पीछे पीछे कर लिया। उसने देखा था आज क्या पकड़ी गई क्या करके वो लड़की आश्रम में प्रवेश कर जाती है। आज गुरु जी कहती है जंगल प्रणाम करती है करके हाथ रखने वाली बेटी है। जितने में मनसूर कर बिल्कुल एक आलोमा गए, एक झाकेमा को देख रहा है कि क्या क्या गतिविधि हो रही है। जितने दोनों प्रणाम किया सतगुरु ने दोनों हाथ सबसे छोड़ के कहा बेटी आ गई, थामा रखी आ गई। छोटा मोटा काम था बेटी, सफाई कर गए, दर्शन साफ कर गए, कल के साथ में गए थे, उसने सारा काम करके गुरुदेव से करना मारे थे। दोनों ने बैठ के आरती की, आरती करके ऐसा हाथ कर देता और गुरुदेव ने भी ऐसा किया। ऊपर से दो पहले आया लड़के, एक लड़की ने ले लिया गुरुदेव ने, दोनों में तीन लगे। लड़की ने कहा कि महाराज जी कुत्ता खड़ा है बाहर, कौन सौ तरीके से उसका भी मार दो, सोची आ गया और कर गए काम लेते थे।
जब उसने फूल मारा ना, उसने वो फूट फूट कर रोकड़ा। सिमली ने बोली रे निकम्मे, दुनिया तेरा पत्थर मारा तू हंस रहा था और मेरे फूल का दर्द मान गया। ने बोला नाजान, तेरे को तो मालूम था मैं किस जख्म में जख्मी हूँ और तेरा हाथ मेरी तरफ भो कैसे गया, तू क्या की भक्ति करती है, तेरा सर कट जाना चाहिए था मेरी तरफ, वो हाथ नहीं होना चाहिए था, मैं भगवान पर आशिक हो रहा हूँ और तेरे में भक्ति नहीं, तो बकवास करती है, इसलिए मैं रो रहा हूँ कि तू ज्ञानवान थी, ये तो नादान थी, कुछ भी मार सकते हैं और तेरे को बेरा था बावड़ी और तेरा हाथ क्यों करोगा, मेरा कहना मैं नो रहा हूँ उसको हाथ। उसको फिर आखिर में टुकड़े टुकड़े कर दिया, नहीं वो माना नहीं,
कोई मालिक ने भी नहीं माना। फिर कहता कि इसके हाथ काट दो, हाथ काट देंगे तो अगर तुम्हें अनल हक नहीं छोड़ा, अनल हक दोनों हाथ काट दिए। फिर उसको क्या किया, इसको फूंक दो, ये काफिर है। हिंदू जलाते हैं, मुसलमान जलाते नहीं। और वो कहते हैं जो जलाए जाते हैं वो काफिर होते हैं। कहते ये काफिर है, ये मुसलमान नहीं, इसको फूंक दो। फूंक दिया, इसकी राख को दरिया में डाल दो, दरिया में डाल दिया। वो राख भी अनल हक कहती हुई जा रही है। 1000 मंसूर उत्पन्न हो गए और सारे नगरमा का घूम रहे अनल हक अनल हक, सारे भी इतर बढ़ गए, भूत आ गए, कोई नहीं बाहर सुन गया। तो ये परमात्मा, तो ये खेल है। कहते हैं मंसूर जैसी अनल हक, अनल हक नहीं जिसने टुकड़े शरीर कराया है। तो इस प्रकार हमने भक्ति को भक्ति समझना चाहिए, समाज को नहीं देखना चाहिए। इतनी भी गलती करते हैं तो मन सिमली की त्रिया वो नादान कहलाता है। साहेब कबीर आज आत्मा को पुकारती, तेरे साथ चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। साहेब कबीर आज आत्मा को पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। 22 लाख वर्ष तप किया, एक तपस्वी कर्ण का आया, तप से राज राज मद मन में नरक ठिकाना पाया। चल धुन धुन का पछताया याची बाजी आर की, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। साहेब कबीर आजा आत्मा तोहे पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। सुख देवर सी योग विधि से सुख देवर सी, तीन लोक फिर आवे पूरा फिर पक्षी की तरिया, नहीं मोक्ष द्वारा पावे। हठ योगी भव भटका खाओ, न पावो युक्ति शब्द सार की, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। साहेब कबीर आजा आत्मा तो पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। 5 वक्त नमाज गुजारे, 5 वक्त नमाज गुजारे, करे शाम को खोना बिना बंदगी भोक बनेंगे, ये रहे जुनम जोना। कर दे ही धर अपला तो ना वो माटी धोवा कुमार की, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। साहेब कबीर आजा तुहे पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। अब आपने सुना कि 22 लाख वर्ष तप की ने तपस्वी करण कहा, तप से राज राज मद मानन नरक ठिकाना पाया, और फिर सरगुंदन का पिस्ता या थी बाजी यार की, हम को तपस्वी महात्मा दिखाई दे जाओ, आपने आकर्षित हो जाते हैं, महात्मा बहुत पहुंचा हुआ है, 12 वर्ष हो गए खड़ा खड़ा तप कर रहा है। ये कहते 22 लाख वर्ष तप किया था, और जब राजा सतगुरु के उसको पहुंचा ना धर्मराज के दरबार में, कहने लगे इसको राजा बना दो। इतने वर्ष उसने राज भोग्या कई जन्मा तक, उसके बाद जब आया ना वापस, अब इसको गधा बना दो। वो कहने लगा महाराज जी गधा क्यों बनाओ, ये तप किया था, तप के बदले राज की मलाई खा ली, अब कोई भक्ति तो ने करी नहीं, 84 लाख दुनिया भोग बेटा। तप से राज राज मजमानम नरक ठिकाना पाया, तपस्वरी सो नराजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, ये नियम है इस नरेंद्र भगवान का। तप करते हो राजा बनते हैं, छोटे मोटे अधिकारी बन जाएंगे, कोई अच्छी एमएलए एमपी बन जाएंगे घने दिन, थोड़े दिन तक, उसके बाद वो 84 लाख जोनियों में चले जाएंगे। आगे बताते हैं कि 5 वक्त नमाज गुजारे और करे शाम न खुना, जैसे मुसलमान भाई कितनी पवित्र प्रार्थना करते हैं भगवान की, नमाज करते हैं, ईश्वर की स्तुति करते हैं, और सांझ में बकरा काट खाया, खरा गजब है ये, पता के प्रार्थना की भगवान की, बिना दरवेश कसाई। देखो सच्चाई को समझना चाहिए, कड़वी नहीं लगनी चाहिए। कभी साहब किसी के दुश्मन नहीं थे, हिंदू और मुसलमान दो नहीं है, ये सच को मान लेना। हम आपको बनाए बैठे हैं, ये सब एक ही परमात्मा की संतान है, और यहाँ हमने अपने अज्ञानता के कारण इतने बड़े मूर्ति बांध लिए। कोई कहे मारा राम बड़ा है, और कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है, ये बातारो लगाई रे, ये तो एक ही बड़ा है, बाकी बड़े कोई ना। आपने देखा कि अगर किसी बकरे मांस खाने से अगर कोई मुक्त हो जाए, आज तक तक प्रमाण मिला कोई नहीं। एक शेख फरीद नाम का एक मुसलमान घर में जन्म था, एक पुण्य आत्मा का, और वो था शरारती गांव बचपन में, गहना उठ था, किसी का सर फोड़ा हुआ, किताब फोड़ा हुआ, रोज लाने लिया, और उसकी माँ जो है उसको समझा पर मानने को नहीं। एक दिन उसकी माँ ने सोचा कि इसने कम में कुकर काम, भाई मैं इतने काम करूं हूं ना, इतनी बार खिसक जाए, काम ना हो जब तक मैं इन्हें संभाल लेती हूँ। उसने सोचा कि इसको लालच देती हूँ कि नमाज कर लिया कर बेटा। तो बोले शेख फरीद अकामा कि बेटा तू नमाज करा करे, क्यों करो नमाज में मुझे क्या मिलेगा, अब तुझे अल्लाह खजूर देगा। अब सच्ची माँ वो खजूर भी नहीं खाया करता, कठोरा गना था मेरा, सच्ची माँ, अब सच्ची भाई, पक्की बात, पक्की बात, अब बता दे मुझे कैसे करनी है। उसने बोली डट जा, मैं अपना टाइम आओगे तो बताऊंगी, नहीं थोड़ा ही। उसने जब काम का समय हुआ तो वहां एक बछौना बचा दिया, कपड़ा सुंदर साफ सा, और कहा कि तू ऐसे लेट जा, नमाज तो उसने के करना था बेचारे, जो करता रहा ना, अल्लाह मुझे खजूर दे, अल्लाह मुझे खजूर दे, पर आंख ना खोली है तरह मैं ना कहूँ। अब वो खजूर के लालच में, और 5 टाइम फिक्स कर दिया उसने उसकी माँ की, मान उसके वो अपने काम के टाइम से हो ना, जब कह जा रहे शेख फरीद ले वो कर ले नमाज, वो नमाज करने लगा। उस माँ ने 2 किलो पक्के खजूर मंगा लिए इकट्ठे, और सूखा कर रख दो, मतलब 2-4 निकाल ले, और उसके बिछौने तला कर दे, उसके कपड़े के नीचे पत्ते हैं लपेट कर। उसने कहा तू आंख ना खोली इतना मैं ना कहूँ, तो उसकी माँ बोली आँख खोल दे, जरूर हो गया ना सब काम उसकी माँ का, वो करेगा अल्लाह खजूर दे, अल्लाह खजूर दे, वो बहुत अच्छा है, तो सबका काम सारता है, वो 2-4 बात बता दी। तो बोली ना आँख खोल दे राजा, आँख खोल कर देख कर खजूर तो कहीं दिखा नहीं उसने, अपनी माँ के पास गया, माँ तो बहुत जूठी है, धोखा दिया ना मैं तेरे को, खजूर नहीं दिया अल्लाह ने, और आज के बाद करवाइए नमाज पति नहीं करो। तो बोली रे तो यूँ थोड़ा ये अल्लाह को सरेआम थोड़ा देता है, तेरे उस अस्त्र आसन के नीचे देखता है। उसने जाके बिछौना छाया खजूर पाए पत्ते में, कूदता अंडा, अब वो खा लिए ना, जब नमा ही बता कम सी करनी है, तो बच्चा लालची होता है, तो नमा फिर बता कम सी करो, थोड़ी डट जा मैं बताऊंगी ईसा जल्दी के कराए, तो वो फिर बच्चा दिया जी। एक दिन क्या हुआ, वह माँ बिछौने के नीचे खजूर रखना भूल गई।
आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।